गोपी जन वाला भागिरिवर धारी जय गोपी जन वाला भागिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय
जय ओम विष्णुपाद परम हंस प्रवृजकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परम हंस प्रवृजकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की श्री श्री गौनिताय भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ग्रंथ श्रीमद भागवतम की निताय गौ प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथा श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 22वां अध्याय श्लोक संख्या 36।
परे अवरे च भावः च ये भावः गुण व्यतिकरात् अनु न तेषां विद्यते क्षेमं ईश विध्वंसित। परे अवरे च ये भावा गुण व्यतिकरादनु नातेषां विद्यते क्षेमम् इश विध्वंसिताशिषाम्। परे अवरे च ये भावा गुण व्यतिकरादनु नातेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषाम्। परे अवरे च ये भावा गुण व्यतिकरादनु नातेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषाम्।
आप सब इकट्ठे बोलेंगे। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की परे जीवन की उच्चतर स्थिति में, अवरे जीवन की निम्नतर अवस्था में, च तथा ये सब भावः विचार गुण भौतिक गुण व्यतिकरात् अन्योन्य क्रिया से अनु पीछे पीछे चलना ना कभी नहीं तेषां उनका विद्यते विद्यमान है क्षेमं कुशल ईश परमेश्वर विध्वंसित विनष्ट आशीषां आशीर्वादों का। अनुवाद दोहराएंगे। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए उन्हें वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाती है। तात्पर्य इसका बहुत बड़ा है। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए उन्हें वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये परम नियंत्रण द्वारा विनष्ट कर दी जाती है। तो तात्पर्य तीन पेज का है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही सुंदर विस्तार में तात्पर्य लिखा हुआ है। हम इस संसार में जीवन के उच्चतर रूप को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं और निम्नतर रूप को अभिशाप। उच्चतर अथवा निम्नतर का यह अंतर तभी तक रहता है जब तक विभिन्न गुण परस्पर क्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपने अच्छे कर्मों से उच्चतर लोकों को या उच्चतर जीवन स्तर यानी उत्तम शिक्षा, सुंदर शरीर आदि को प्राप्त होते हैं। ये सभी पुण्य कर्मों के प्रतिफल हैं। इसी तरह अपवित्र कार्यों से हम अशिक्षित रह जाते हैं, कुरूप शरीर पाते हैं, गरीब बनते रहते हैं आदि। किंतु जीवन की ये विभिन्न अवस्थाएं सत्व रजो तथा तमोगुण की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकृति के नियमों के अधीन है। ये सारे गुण हम समग्र विश्व के विलय के समय कार्य करना बंद कर देते हैं। अतः भगवान ने भगवद्गीता के 8:16 में कहा है, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावृत अर्जुन मामुपेतितु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। भले ही हम अपने आप को विज्ञान के बल पर या जीवन के धार्मिक नियमों, त्याग तथा कर्म से उच्चतर लोक तक उठा लें, किन्तु प्रलय के समय ये सारे लोक और उनकी प्राणी विनिष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक में ईश विध्वंसिता शिशाम सूचित करता है कि ये सारे आशीर्वाद परम नियंता द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उस समय कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा, चाहे इस लोक में हो या अन्य लोक में। हमारे शरीर विनष्ट हो जाएंगे और हमें महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्ष तक अचेत अवस्था में रहना होगा, और जब सृष्टि पुनः प्रकट होगी तो उसमें हम विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कार्य प्रारंभ करने होंगे। अतः मात्र उच्चतर लोक तक उठ जाने से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस दृश्य जगत से बाहर निकलने, आत्म जगत में जाने और श्री भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है, यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। हमें किसी भी उच्च या निम्न वस्तु के प्रति आकृष्ट न होकर उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास्तविक कार्य जीवन उद्देश्य की खोज और भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। इस प्रकार हम ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों में सतत आशीर्वाद पाते रहेंगे। नियमित मानवीय सभ्यता में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रगति होती है। मानव समाज में धर्म होना ही चाहिए। बिना धर्म के मानव समाज पशुओं का समाज है। आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति को धर्म पर आधारित होना चाहिए। जब धर्म, अर्थ तथा काम समन्वित हो जाते हैं तो जन्म, मृत्यु, जरा रोग से मुक्ति निश्चित है। किंतु इस कली काल में धर्म तथा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। लोगों को रुचि केवल आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की ओर है। फलतः सारे विश्व में पर्याप्त आर्थिक उन्नति के बावजूद मानव समाज के आचार विचार पशु तुल्य है। जब सब कुछ नितांत पशु तुल्य हो जाता है तो प्रलय होता है। इस प्रलय को ईश विध्वंसिता शिशाम के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान द्वारा प्रदत्त आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति का आशीर्वाद अंत में विनष्ट हो जाता है। इस कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उनका एकमात्र कार्य होगा ब्रह्मांड के समस्त मनुष्यों का संहार। इस नरसंहार के बाद पुनः स्वर्णिम युग आएगा। अतः हमें जान लेना होगा कि हमारे सारे कार्यकलाप बच्चों के खेलवाड़ सदृश हैं। बच्चे समुद्र तट पर खेल करते हैं, पिता तट पर बैठा बैठा बच्चों के द्वारा महलों का बनता देखता रह सकता है, किंतु अंत में पिता के कहने पर बच्चों को सब कुछ छोड़कर घर वापस आना पड़ता है। तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति के बच्चों जैसे खेलवाड़ में लगे रहते हैं, कभी कभी भगवान उन पर अनुग्रह करके उनके सारे निर्माण कार्यों को विनष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा, यस्याहम अनुग्रहामी हरिष्ये तद्धनम शनै। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जब वे अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उसका सारा धन वैभव हर लेते हैं। अतः सामान्यता यह देखा जाता है कि वैष्णव अधिक धनवान नहीं होते। जब कोई वैष्णव या भक्त धनवान होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। भगवान उस पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए उसकी तथा कथित आर्थिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य को विनष्ट कर देते हैं। घबराइए मत। इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति करने से निराश होकर अंततः भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा कार्य भी ईश विध्वंसिताशिषाम माना जा सकता है, जिसके द्वारा भगवान मनुष्य के ऐश्वर्य को नष्ट करके उसके आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न कर देते हैं। उपदेश देते समय हमने देखा है कि भौतिकवादी व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे और अधिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। यदि उनकी इस प्रकार की ऐश्वर्य इच्छा को रोका जाए तो ऐसे व्यक्ति भक्तों को कभी नमस्कार भी ना करें। ऐसे भौतिकवादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से नाता रखते हैं। वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और उपदेश कार्य के लिए कुछ दान देते हैं, जिससे उन्हें और आर्थिक लाभ हो सके। किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एक निष्ठ है तो भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने के लिए बाध्य करते हैं और अपने प्रति पूर्ण समर्पण करा लेते हैं। चूंकि भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते, अतः लोग भगवान विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान को पूजने वाले वैष्णव धनी नहीं होते। किंतु ऐसे भौतिकतावादी पुरुष शिवजी की उपासना करके धन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिवजी देवी दुर्गा के पति हैं जो इस ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री हैं। शिवजी के अनुग्रह से ऐसे भक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। उदाहरणतः रावण शिवजी का महान उपासक तथा भक्त था, जिसके बदले में उसे देवी दुर्गा के समस्त वर प्राप्त थे, यहां तक कि उसका सारा साम्राज्य स्वर्ण निर्मित भवनों का था। इस युग में ब्राजील के स्वर्ण की पुष्कल राशि प्राप्त हुई है और पुराणों से प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रावण का साम्राज्य था, किंतु भगवान रामचंद्र ने उसे ध्वस्त कर दिया था। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईश विध्वंसिताशिषाम का अर्थ समझ सकते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि इससे वे संसार में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से चक्र में पुनः फंस जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति फूल उठते हैं। रावण ने सीता का, जो भगवान रामचंद्र की पत्नी तथा ऐश्वर्य की देवी थी, यह सोचकर अपहरण करने का दुस्साहस किया कि वह भगवान की अलादनी शक्ति को भोग सकेगा, किंतु ऐसे कार्य से रावण विनष्ट हो गया। इस समय मानवीय सभ्यता आर्थिक उन्नति तथा इंद्र तृप्ति के प्रति इतनी अधिक आसक्त है कि वह विनाश के कगार पर खड़ी है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके जीवन के लिए और बहुत ही सुंदर तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है परे अवरे च ये भावा गुण व्यति कराधनु ना तेषां विद्यते क्षेमं ईश विन्द्वंसिताशिषां कि हम लोग इस जीवन के संसार की जो उच्चतम स्थिति है उसको निम्नतर स्थिति से बेहतर समझते हैं और वो समझते हैं कि हमें एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और जिसके पास निम्नतर स्थिति है यानी कि इंद्र तृप्ति की कम सुविधाएं हैं उस व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे ऊपर अभिशाप है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दरिद्रता एक अभिशाप है जिसके पास धन नहीं है वो एक अभिशाप है, यानी कि जो धनी है उसको वरदान मिला हुआ है। तो ये सब यही समझते हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है कि हम अपने जीवन के स्तर को और ऊंचा उठाएं। किसी को हम आशीर्वाद देते हैं तभी यही आशीर्वाद देते हैं कि अच्छे ढंग से सेटल हो जाओ, खूब धन कमाओ, खूब ऐश्वर्य में रहो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर जीवन साथी मिले। तो हम यही आशीर्वाद देते हैं कि जीवन का स्तर ऊंचा हो जाए। लेकिन बता रहे हैं कि ये दोनों ही क्या हैं, इस प्रकार का भेदभाव गुण व्यति कराधनु, इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग से ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं को अस्थाई का कोई स्थायी तत्व नहीं है, ना तेषाम विद्यते, इनका कोई स्थायी अस्तित्व है ही नहीं। और अगर जी हमने आशीर्वाद दे भी दिए तो क्या होगा, ईश विध्वंसिताशिता, जो भगवान है इन सारे के सारे आशीर्वादों को विध्वंस कर देंगे, तो आपके उस आशीर्वाद देने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो हमें समझना होगा कि इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की गई है, असली आशीर्वाद क्या है, और फिर इस असली आशीर्वाद को जो असली धन है उसकी हम कैसे रक्षा करें। तो साधारणतः यही देखा गया है कि जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, तो इसका यही लक्ष्य होता है कि वो व्यक्ति भौतिक जगत में खूब उन्नति करे, खूब प्रगति करे। आज अगर किसी माता पिता से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं तो चाहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, कहीं सेटल हो जाएं बस तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो उनसे पूछो कि सेटल होने का मतलब क्या है, सेटल होने का मतलब यही है कि बस अपने पांव पे खड़ा हो जाए, उसका बिजनेस सेट हो जाए, कोई शादी हो जाए, विवाह हो जाए, बस और हमें क्या चाहिए। तो खूब श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। तो उनका अर्थ है जीवन का सेटल होने का कि उसके पास आहार, निद्रा, भय, मैथुन की अच्छी सुविधाएं हों, उसके बाद उसका अगला जीवन कैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगले जीवन में वो कुत्ता बने, बिल्ली बने, इसका कोई मतलब नहीं है कि बस वो इस जन्म में अच्छे ढंग से खा ले, पी ले, बच्चे पैदा कर ले और सो जाए, बस यही जीवन का लक्ष्य है।
इसलिए जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारा जीवन का असली अस्तित्व क्या है। हम शरीर नहीं, आत्मा है, और हर एक जीव अपने आप को शरीर से अपनी पहचान करके शरीर की सुख सुविधाओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान रहा है। तो जिस व्यक्ति के पास अच्छे भोगने की सुविधाएं हैं, वो अपने आप को भाग्यवान समझ रहा है। जो सुंदर है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, जिसके पास धन है, वो सोचता है कि मैं भाग्यवान हूं, और जिसके पास ये वस्तुएं नहीं है, वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा है। तो चाहे जो अपने आप को भाग्यवान मान रहा है या दुर्भाग्यशाली मान रहा है, दोनों ही परिस्थितियां अस्थाई हैं। अगर किसी का अच्छा भाग्य चल भी रहा है, कुछ ही समय में ये समाप्त हो जाएगा। और कोई अपने आप को बहुत दुखी समझ रहा है कि मेरे पास इंद्र तृप्ति की सुविधाएं नहीं है, तो भी वो समाप्त हो जाएगा। तो ये सुख और दुख जो भौतिक जगत में है अस्थाई है। वास्तव में इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। जो सुख हमें प्रतीत होता है, जब हमारे दुख कम हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सुखी हो गए। वास्तव में इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। किसी भी हम लोक में चले जाएं, चाहे पृथ्वी लोक में रहें या स्वर्ग लोक में रहें, कहीं भी जीव को सुख प्राप्त नहीं है। क्योंकि स्वर्ग लोक में भी हम जाते हैं तो वहां पे भी आपस में शत्रुता है, द्वेष है, ईर्ष्या है। जब स्वर्ग के राजा इंद्र देखते हैं कि कहीं भी कोई ज्यादा तपस्या कर रहा है, तो वो उनको बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे एक बार नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को लगा कि ये कहीं मेरा पद ना छीन लें। तो इंद्रदेव ने क्या किया कि सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया नर नारायण ऋषि को आकर्षित करने के लिए। वो भूल गए कि नर नारायण ऋषि प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि सारी अप्सराएं उनको मोहने का प्रयास कर रही हैं, तो भगवान मुस्कुराए। और भगवान ने मुस्कुरा कर इतने सुंदर सुंदर स्त्रियों को उत्पन्न कर दिया, जिनके आगे स्वर्ग की अप्सराएं बिल्कुल फीकी पड़ गई। और तब सारे के सारे देवताओं को लगा कि अरे ये क्या हो गया। तब उनको अपनी वास्तविक स्थिति मालूम चले कि वो कौन है और भगवान कौन है। और फिर नारायण ऋषि ने कहा कि चलो संकोच मत करो, इन स्त्रियों में से जो भी आपको सुंदर स्त्री लगती है उसको अपने साथ ले जाइए, वो आपके स्वर की शोभा बढ़ाएंगे। तो फिर बड़े संकोच करते हुए इंद्र जी ने उर्वशी को चुना और अपने साथ ले गए। तो ये वहां पे इंद्र जी परेशान हो गए कि कहीं नर नारायण ऋषि करके तपस्या करके उनका पद ना छीन ले। तो स्वर्ग के लोक में भी लोग सुखी नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना की है तो उसको बोला है दुखाल्य अशाश्वतम। इस बात को हमें अच्छे ढंग से समझ जाना चाहिए, क्योंकि जिस ऊपर स्टैंप लग गई है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इस भौतिक जगत में अगर हम स्थायी सुख ढूंढ रहे हैं तो वैसे ही है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा हो। कुत्ता अपने पूंछ के पीछे भागता रहे, डॉग चेजिंग इट्स ओन टेल, नहीं कभी अपनी पूंछ को पकड़ नहीं पाएगा। इसी ढंग से हम लोग भी थकते नहीं है, प्रयास किए जा रहे हैं जन्मों जन्मों तक कि शायद हमें इस भौतिक जगत में सुख मिल जाए, लेकिन भौतिक जगत में सुख नहीं है। अक्सर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके संबंधी लिख देते हैं कि स्वर्गवास हो गया। जैसे स्वर्ग में वास करना बहुत बड़े स्टेटस की बात है, हालांकि पूरा जीवन तो उन्होंने पाप में जीवन बताया, निश्चित रूप से वो नरक में गए होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कह देते हैं स्वर्गवास। तो अगर उनको अपने आप को प्रसन्न करना ही है तो उनको वैकुंठवास या गोलकधामवास। तो लोगों को, साधारण जनता को ये सूचना ही नहीं है कि स्वर्ग और नर्क से परे भी कोई वस्तु है, कोई लोक है जो कि इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे है। तो ये सब का सब हो रहा है प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में, और जब तक प्रकृति को तीन गुणों का प्रभाव रहेगा ये जो जगत है ये अस्थाई रहेगा। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में बताया गया है कि संसार का प्रत्येक जीव प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। वैसे तो इस भौतिक जगत की तुलना जेल खाने से की गई है, और जेल खाने में अलग अलग स्तर है। तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो देवता गण भी हैं वो भी कैदी हैं, हम भी कैदी हैं, देवता गण भी कैदी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम जेल में जाएंगे, कुछ कैदियों को बड़ी बड़ी चेनों से बांध के रखा जाता है, जंजीरों से बांध के रखा जाता है, और कुछ कैदी खुलेआम घूमते हैं, आराम से घूमते हैं, और वो तो नए कैदियों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो बेचारा जो नया कैदी आता है वो सोचता है कि ये लोग भी शायद पुलिस के ही लोग हैं, बाद में कुछ समय के बाद उसको मालूम चलता है ये पुलिस वाले नहीं है, पुराने सीनियर कैदी हैं। तो सीनियर कैदी जूनियर की रैगिंग करते हैं, उनसे वो टॉयलेट साफ कराते हैं और सफाई कराते हैं, वो सोचते हैं ये पुलिस के ही अधिकारी हैं शायद। बाद में उनकी आंखें खुलती हैं, मालूम चलता है कि ये सीनियर कैदी हैं। इसी ढंग से मूर्ख लोग देवता लोगों को ही भगवान समझते हैं, बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मालूम चलता है कि ये भी जीव है, ये भी इस भौतिक जगत के ही जीव है, ये भी कैदी है। तो जब कैदी सीनियर हो जाते हैं तो पुलिस वाले उनको जिम्मेवारियां देते हैं कि तुम ही जिम्मेवारियां संभालो, इस कैद को संभालो। तो एक कैदी लोग ही, सीनियर कैदी देवता लोग ही इस भौतिक जगत को संभाल रहे हैं। तो चाहे देवतागण हो चाहे हम हो, हम सब प्रकृति के तीन गुणों से बने हुए हैं। तो अगर हमें असली आशीर्वाद चाहिए तो हमें ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए कि वास्तव में हम असली सुख को प्राप्त कर सकें। जब कोई आशीर्वाद देता है कि सुखी परिवार हो तो अच्छी बात है, यह आशीर्वाद होना ही चाहिए। कि धन धान्य की प्राप्ति हो, ठीक बात है, यही आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन ऐसा परिवार जो कभी, जिसका हमसे कभी साथ ना छूटे, वो परिवार कभी सुखी हो ही नहीं सकता जिस परिवार में मुखिया ही ना हो। तो हमारे परिवार की मुखिया कौन है? कृष्ण। तो उनके साथ में जाकर ही हम एक हैप्पी फैमिली लाइफ जी सकते हैं। बिना परिवार के मुखिया के परिवार सुखी हो ही नहीं सकता। तो बोले हाँ परिवार सुखी रहे, बिल्कुल, लेकिन सनातन परिवार सुखी रहे, हम भगवान श्री कृष्ण के, हम कृष्ण के परिवार को ज्वाइन कर सकें, वापस वहां जा सकें। और अगर बोले कि आपको धन धान्य सुंदरता की प्राप्ति हो, तो हाँ हमें असली सुंदरता असली धन मिले। देखा जाए तो हर जीव अकाल्पनिक तरीके से बहुत सुंदर है, अनइमेजिनेबली ब्यूटीफुल। हम सब जो जीव हैं कृष्ण के अंश हैं, तो सारे के सारे जीव बहुत ही सुंदर हैं, सबके सब शक्तिशाली हैं, सबके सब कभी नाश ना होने वाले हैं, सनातन हैं। तो असली आशीर्वाद ये है कि हम असली ढंग से सेटल हो जाएं, इसमें सेटल हो जाएं, कृष्ण के चरणों में सेटल हो जाएं, अपनी प्राकृतिक अवस्था में सेटल हो जाएं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। नारायण मति अस्तु, बस एक बार भगवान के चरणों में हमें शरण मिल जाए, ये असली आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद क्या देना कि जो समाप्त हो जाए, जिसको भगवान समाप्त कर दें। तो ऐसे आशीर्वाद को भगवान समाप्त नहीं करते, भगवान हमेशा हमें आध्यात्मिक आशीष देते हैं, भौतिक आशीष नहीं देंगे। लेकिन जितने भी ये वेद बनाए गए हैं, भगवान ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना के साथ साथ भगवान ने वेदों की रचना की, ताकि वेद से हम समझ सकें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए वेदों में धर्म अर्थ काम मोक्ष दिया गया। तो ये इस ढंग से दिया गया, संयोजित किया गया कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति करते रहें, साथ साथ हम मोक्ष की ओर भी प्रगति करते रहें। लेकिन आज के कलयुग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से धर्म और मोक्ष को हटा दिया गया है। जीवन का लक्ष्य केवल अर्थ और काम, धन अर्जन करना और भोग विलास करना, बस। जैसे कि अमेरिका में स्लोगन है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, कि मंडे से फ्राइडे बहुत काम करो, सैटरडे से संडे खूब पार्टी करो, और फिर वो आगे का भूल गए, सफर हार्डेस्ट। वर्क हार्ड पार्टी हार्डर सफर हार्डेस्ट। तो वहां तो यही जीवन है, वहां पे लोगों को मासिक वेतन नहीं मिलता, साप्ताहिक वेतन मिलता है। तो हर फ्राइडे को उनको पे स्लिप मिलती है, चेक मिलता है, उससे वो खूब भोग विलास करते हैं और फिर मंडे को आकर फिर काम करते हैं। तो उनकी पार्टी हार्डर कैसे होती है? तो ओरिनस गोपाल के कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं कि वहां आजकल पाश्चात्य जगत में पार्टी का क्या अर्थ है। तो इस भौतिक जगत का जो सबसे बड़ा सुख है, मैथुन का सुख, तो ये सब लोग 5 दिन काम करने के बाद पार्टीज में जाते हैं, खूब मदिरा पान करते हैं। तो फिर एक स्त्री या एक पुरुष, जो पति और पत्नी है, वो एक स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होते। तो पहले शुरू किया इन्होंने स्वैपिंग, कि एक पुरुष पराई स्त्री से और एक स्त्री पराई पुरुष के साथ संभोग स्थापित करेंगे, शायद इसमें आनंद मिल जाए। ये सब करके भी देख लिया, हार्ड ट्राई कर लिया, नहीं, और हार्डर। तो बोले अब क्या करें? बोले जितना एक से ज्यादा पुरुष स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, हार्डर, और कोशिश करें सुख प्राप्त करने की, नहीं हो रहा, और हार्डर, और ट्राई करो सुख प्राप्त करने की। अब बोले
पुरुष और स्त्री के साथ संभोग होता तो आनंद नहीं आता, पुरुष पुरुष के साथ करे, स्त्री स्त्री के साथ करे, और हार्डर ट्राई करो, उसमें भी आनंद नहीं मिल रहा। और ये सब बेकार है, ये जो नर है ये नर नारी है बेकार है, क्यों ना पशुओं के साथ संबंध स्थापित करें। तो उन पार्टीज में जो बेस्ट पार्टनर माना जाता है वो सुअर गधा, उसके साथ पुरुष और स्त्री संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये वास्तविकता है, ये कोई कहानी नहीं बताई जा रही, ये उनका कंसेप्ट है। पार्टी हार्डर और हार्ड ट्राई करें जिससे हम अपने दुख भूल सकें। तो जो जीव पशुओं के साथ संभोग करना चाहता है तो हार्डेस्ट, वो अगले जीवन में क्या बनेगा, पशु ही बनेगा। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में जाके ये काम करे, सुअर के साथ संबंध स्थापित करे और अगले जीवन में सुअर बने, तो इसमें माता पिता प्रसन्न होते हैं कि अगले जीवन में कुछ भी बने, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंड गो टू हेल, सी यू इन द हेल, हम भी नरक में मिलेंगे, आप भी नरक में मिलेंगे, वहीं फिर से पार्टी करेंगे। तो ये ऐसा आशीर्वाद का क्या लाभ। धर्म और मोक्ष को बिल्कुल भूलकर जीवन का लक्ष्य केवल अर्थ और काम, बस सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति और इंद्र तृप्ति। और जिसके पास इंद्र तृप्ति की ज्यादा सुविधाएं है उससे हमें द्वेष हो जाता है कि उसके पास इंद्र तृप्ति की ज्यादा सुविधाएं क्यों है। वास्तव में देखा जाए इंद्र तृप्ति का कोई आशीर्वाद दे रहा है तो यह आशीर्वाद नहीं है, यह अभिशाप है। इट इज नॉट अ रिवार्ड, इट्स ए पनिशमेंट। क्योंकि हम इंद्र तृप्ति के चक्कर में पड़ गए तो बार बार इस जरा मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये भौतिक जगत उस छिद्र के समान है जिसमें लोग मल त्यागते हैं। तो अगर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि सुखी रहो, मतलब कि इसी छिद्र में पड़ रहे हो जिसमें आगे लोग मल त्यागेंगे, तो ऐसे छिद्र में कौन सुखी रह सकता है जिसमें लोग आके मल त्यागते हैं। तो इस ढंग से हम तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जगत में सुख पाने के लिए, लेकिन इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। तो कोई पूछेगा ये भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना की, क्यों इतने दुख दिए यहां पे? कई सिनेमाओं में गाने भी आते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्यों इतनी ऐसी दुनिया बना दी तूने, क्यों इतने दुख दिए? वो इसलिए दुख दिए कि जागो, ये जगत हमारे लिए नहीं है। दिस इज नॉट अवर परमानेंट होम, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस टू स्टे। उस दिन माननीय स्वामी महाराज बता रहे थे कि 1927 में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने कहा दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर द जेंटलमैन, 1927 में। और आज का देखेंगे तो वो कह रहे थे कि भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज शायद बोलेंगे ही नहीं, ऐसी खराब स्थिति होगी विश्व की, उनके मुख से वाक्य ही नहीं निकलेंगे क्या बोले। तो ये जगत अस्थाई है और यहां पर दुख इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमें याद आए कि यह घर हमारा असली घर नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यहां जो की जाती है हीटिंग एंड हैमरिंग, एक जीव को हीट किया जाता है, तपाया जाता है तीन तापों के द्वारा, अधिभौतिक आध्यात्मिक अधिदैविक तापों के द्वारा खूब गर्म किया जाता है हमें। जब खूब गर्म किया जाता है फिर हथौड़े मारे जाते हैं जन्म के, मृत्यु के, बुढ़ापे के, बीमारी के। तो बार बार हर एक जन्म में हमें तपाया जाएगा और हथौड़े मारे जाएंगे, तपाया जाएगा हथौड़े मारे जाएंगे, तब जाके हम निखर के आएंगे क्यों मारपीट हो रही है, क्यों मैं इतना दुख पा रहा हूं। तब एक इच्छा जागृत होगी कि ये क्यों मुझे तपाया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, व्हाई एम आई सफरिंग, मेरी गलती क्या है। फिर मालूम चलेगा कि हमने क्या गलती की है कि हम कृष्ण से विमुख होकर यहां आनंद को खोज रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हमें असली आनंद को प्राप्त करना है, असली आनंद को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। ये चार पुरुषोत्तम पंचम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, ये असली धन है। और सारे के सारे वेद शास्त्र यही कह रहे हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधे प्रयोजन कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। वेद शास्त्र कह रहे हैं कि संबंध, हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, अभिधेय फिर भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करना है, प्रयोजन फिर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन, इन धन को हमें अर्जन करने का प्रयास करना है। तो ये हमारे असली ऐश्वर्य है, प्रेमो पुमार्थो महान। जिस व्यक्ति के पास ये असली धन है उसको किसी भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, किसी भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। और जिस जीव के पास ये धन नहीं है उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, उस कुछ ना कुछ चाहिए उसको। तभी बोला गया है कि बिना कृष्णा भाना भावित के जो व्यक्ति है वो निर्धन है। जो जीव कृष्णा भाना भावित नहीं है वो निर्धन है। दिखने में वो हो सकता है भौतिक जगत में वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति है, क्योंकि वो कृष्णा भाना भावित नहीं है। तो इस धन को अर्जन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तभी नरोत्तमदास ठाकुर क्या बोलते हैं, गोलो कर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। देखिए धन अर्जन हम क्यों करना चाहते हैं, धन से हम क्या प्राप्त करते हैं, धन क्यों अर्जन करना चाहते हैं आप सब इंद्र तृप्ति से, और धन प्राप्त करना चाहते हैं सुख और सुरक्षा के लिए, कि हमें सुख भी मिलेगा। और लोग लगते हैं धन बचा के रखते हैं कि कोई इमरजेंसी आएंगी बीमारियों में काम आएगा। तो ऐसे लोग जो बीमारियों के लिए धन बचा के रखते हैं वो बीमारी में ही लगते हैं। भगवान इच्छा पूरी करते हैं, वो कहते हैं ये धन हम बीमारी के लिए रख रहे हैं, तो भगवान कह रहे तथास्तु बीमारियों में ही काम आएगा, आपने ही रखा था उसके लिए, पूरी प्लानिंग आपकी एज पर प्लानिंग चल रही है, सारे प्लान हम पूरा करेंगे। तो अगर देखें कि ये धन हम अर्जन करते हैं सुख और सुरक्षा के लिए, तो कब ये सुख देता है, ये भागवत में क्या है कहा गया है कि जो धन है ये आत्मा का हनन करता है, इट द किलर ऑफ द सोल। और जैसे ही धन होता है हम देखते हैं किस ढंग से हमारे परिवार वाले रिश्तेदार कैसे रंग बदलते हैं। जैसे जैसे हमारा धन ऊपर नीचे होता है हम उनके बदलते हुए रंग देख सकते हैं। तो धन अर्जन करना, धन संभाल के रखना, धन को खर्च करना, तीनों ही दुखदायी है। तो धन हमें सुख नहीं देता। और दूसरा है कि धन हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। धन जितना ज्यादा धनी व्यक्ति है उतना ज्यादा असुरक्षित है। अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए धनी व्यक्ति कुत्तों का सहारा लेता है, बड़े बड़े कुत्ते पालेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, तरह तरह के सिक्योरिटी लॉक्स रखता है। तो धन से हमें ना तो सुरक्षा मिलती है ना सुख मिलता है। लेकिन गोलोक अरे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो प्रेम का धन है इससे हमें सुख भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। हमेशा हम सुखी रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो ये हमें आशीर्वाद देना चाहिए कि तुम्हें प्रेम धन प्राप्त हो। अगर किसी को आशीर्वाद देना भी है कि धनी बनो तो असली धनवान, असली प्रेम धन प्राप्त करो। तो इस ढंग से प्रत्येक जन्म में हम इंद्र तृप्ति की चेष्टा करते 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 कई कई योनियों में भटकते हैं, कई कई योनियों में हम भटक चुके हैं। कल्पना कीजिए कि अगली योनि कौन सी होगी हमें मालूम नहीं है, उसमें भी हम इंद्र तृप्ति की चेष्टा करेंगे। ऐसे कई योनियों में हम भटक के आ चुके हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हरेक योनि में संघर्ष करने करने के बाद कोई भाग्यवान जीव के ऊपर कृष्ण की कृपा होती है, उसको गुरु का संरक्षण मिलता है और भक्ति लता बीज प्राप्त होता है उसको। तो जो ये भक्ति का बीज मिला है ये असली आशीर्वाद है कृष्ण के द्वारा। इसकी हमें पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए कि इस ये बीज अच्छे ढंग से पनपे और ये भक्ति लता बढ़ते 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 भौतिक ब्रह्मांड को फूटते हुए सीधा कृष्ण के चरणों में जाए और फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इस भक्ति में लगने के बाद, क्योंकि हमारे बद अवस्था से हम आए हैं तो कई भौतिक इच्छाएं अभी भी रहती हैं। तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई भक्त भक्ति भी करता है साथ साथ भौतिक उन्नति भी चाहता है तो भगवान क्या करते हैं, उसके ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि अगर कोई जीव किसी भी कारण से हमारी भगवान की सेवा में लगता है, अन्य काम यदि करे कृष्णेर भजन ना मागिता कृष्ण तारे देन स्वे चरण। कोई कुछ भी कामना कर रहा है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उधार दी, चाहे धन की इच्छा से आया है या मोक्ष की इच्छा से आया है, अगर वो कृष्ण का भजन कर रहा है तो बिना मांगे ही वो मांग नहीं रहा कृष्ण के चरणों को, नहीं कृष्ण इतने कृपालु हैं कि उनको अपने चरणों का आश्रय दे देते हैं। समझ रहे हैं बात कि अगर कोई भगवान कृष्ण के पास भौतिक इच्छाओं से आए या मोक्ष की इच्छा से भी आए, भगवान बिना मांगे उसको अपने चरणों का शरण दे देते हैं। कितने कृपालु हैं कि आप एक बारी आओ तो सी मेरे चरणों में। लेकिन कोई अगर विषय का सुख मांगे, कृष्ण कहे आम भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ा मूर्ख कि अरे मूर्ख आम ही भजे मांगे विषय सुख, एक तो मेरा भजन कर रहे ऊपर से विषयों का सुख मांग रहे, अमृत को छोड़कर जहर मांग रहे, बहुत बड़ा मूर्ख है। तो मैं क्या करूंगा, अमी विज्ञा एई मूर्ख विषय केन दिबा, कि ये तो मूर्ख है, इसको क्या मालूम क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, अमी विज्ञा मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं क्या करूंगा, स्वचनामृत दिया विषय भूलेबा, कि मैं इसको अपने चरणों की शरण दे दूंगा और विषय भुला दूंगा। तो यस्याहम अनुग्रहम हरिष्ये तत् धनंशनय, कि जिनके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं धीरे धीरे करके उनका सारा धन छीन लेता हूं। तो जब ये श्लोक सुनते हैं लोग तो डर जाते हैं अंदर से, एकदम कांप उठते हैं। और काफी लोग कहते हैं नहीं नहीं हम पहले ही अच्छे थे, दुर्गा जी की भक्ति शिव जी की भक्ति करना अच्छा था, फिर उनको याद आता है हाँ सही बात है, जब से मैंने कृष्ण भक्ति में जुड़ा हूं वहां लॉस हुआ है ऐसे ऐसे हुआ है, और वो देखो जो मेरा मित्र है वो कितनी कहां से कहां पहुंच गया और मैं यहीं का यहीं हूं, भक्तों ने मुझे मूर्ख बना दिया कि क्या हो गया। हाँ तो इसलिए कहते हैं बैलेंस बना के चलना चाहिए, ज्यादा मत पढ़ो है ना, थोड़ी थोड़ी बीमारी रहने दो, ज्यादा मत पढ़ो, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। कौन आएगा ये हरे कृष्ण करते पेट थोड़ी भरेगा, तो ये डर बना रहता है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसमें डरने की बात नहीं है। हमारे पास उदाहरण है बलि महाराज जी का है ना, बलि महाराज जी तीनों लोकों के राजा थे, भगवान आए सब कुछ हर लिया उनका, सब कुछ हर लिया और उनको बंदी बना दिया। और फिर उनको परिणाम क्या मिला इसका, भगवान ने उनको कौन सा राज्य दिया, सूतल लोक का राज्य दिया, और सूतल लोक का जो ऐश्वर्य था स्वर्ग के ऐश्वर्य से 100 गुना ज्यादा था, नंबर एक। नंबर दो, सूतल के लोक में भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि इस लोक पे कोई भी आक्रमण नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और मैं स्वयं इसकी सुरक्षा करूंगा, स्वयं इसकी रक्षा करूंगा, और भगवान पहरेदार बन के खड़े हैं। और नंबर तीन, इस श्लोक में किसी तरह की कोई चिंता कोई डर कोई बीमारी कुछ नहीं रहेगा, ना कोई द्वेष, हर तरीके से ये बिल्कुल मुक्त रहेगा। तो भगवान अगर छीनते हैं तो उससे ज्यादा देते हैं। और दूसरा, भगवान हर किसी का धन नहीं छीनेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा है। तो भगवान योग्यता देखकर परीक्षा लेते हैं, योग्यता देख के परीक्षा लेंगे। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, श्रील प्रभुपाद जी झांसी में प्रवचन दे रहे थे और वहां उनको खबर मिली कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो प्रभुपाद ने तुरंत प्रसन्न होकर ये श्लोक बोला, यस्याहम अनुग्रह हरिष्ये तप धनर्शनय, और बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रभुपाद जी के जो बेटे थे वृंदावन चंद्र, उन्होंने कहा कि चलो वापिस संभालते हैं, बोले प्रभुपाद बोले अब नहीं बहुत हो गया, ये भगवान का फाइनल सिग्नल था कि अब चलो अमेरिका की ओर, बहुत हो गया इंडिया में और अब तैयारी शुरू करो। तो वो भगवान के सिग्नल को समझ गए। तो हम लोग जो अभी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमारे साथ भगवान ऐसी परीक्षा लेंगे। और ये भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत धनवान हो, बहुत सुंदर हो, बहुत शिक्षित हो या ऊंचे कुल में जन्म खो, तो ये भक्ति की के लिए बाधा मानी जाती है। कुंती महारानी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म, धनवान होना, शिक्षा होना और रूप होना, ये भक्ति के लिए बाधक है। लेकिन ये चारों ऐश्वर्य होते हुए भी अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भागवतम के 8वें स्कंद में बताया गया है कि ये भगवान की विशेष कृपा है। जिस व्यक्ति के पास धन है और रूप है, शिक्षा है, ऊंचे कुल में जन्म है, इसके होते हुए भी वो भक्ति कर रहा है, जिसको भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए। और भगवान ऐसे भक्त का ऐश्वर्य और बढ़ाते हैं। भागवत में लिखा गया कि भगवान ऐसे भक्त का ऐश्वर्य और बढ़ाएंगे, और धन देंगे, और सुंदरता देंगे, और शिक्षा देंगे, क्योंकि ये जो भक्त है इन ऐश्वर्यों का प्रयोग अपने लिए नहीं कर रहा, भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। तो उनको और धन बढ़ेगा, और शिक्षा बढ़ेगी, और सुंदरता बढ़ेगी। वही सुना रहा हूं। तो लेकिन उसमें ये धन और ऐश्वर्य को हमें अपनी सेवा में नहीं लगाना। जहां अपनी सेवा में लगाना शुरू किया और भक्ति का प्रयास किया, फिर भगवान सब छीन लेंगे। जैसे कि ध्रुव महाराज ने भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि 36,000 साल तक आप राज्य करोगे और आप बूढ़े भी नहीं होगे, आपकी इंद्रियां बलशाली रहेंगी, शक्तिशाली रहेंगी। तो वो तो कुछ भी नहीं चाहते थे, भगवान ने उनको ऐश्वर्य दिया। सुदामा दरिद्र थे, लेकिन भगवान ने उनको जबरदस्ती उनको महल दिया। पांडवों ने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद राजस्व यज्ञ में भगवान ने उनको राजा के रूप में स्थापित किया। तो जो भगवान जो धन छीनते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि वो धन छीनते हैं जो कि पुण्य कर्मों के द्वारा कमाया जाता है। जो भक्ति के द्वारा धन मिल रहा है, भगवान उसको और बढ़ाते हैं। लेकिन जो कभी कभी धन छीनते हैं, वो वाला धन छीनेंगे जो कि पुण्य कर्मों के द्वारा हमने अर्जित किया हुआ है। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, और अगर भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं तो इस परीक्षा को पास करने के लिए भगवान शक्ति भी देते हैं। भगवान कोई, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, सैडिस्टिक व्यक्ति नहीं है। हमें दुख देके उनको आनंद नहीं आता कि धन छीन लिया तो भगवान को खुश होंगे। भगवान को धन की कमी थोड़ी है, भगवान हमारा भला चाहते हैं। सुहृद सर्वभूतानां, वो भक्तों के तो विशेष प्रेमी है भगवान। तो भगवान चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनके पास जाएं। तो जो जिस भक्त के लिए अच्छा है, भगवान उसको वैसे उसके साथ करेंगे। अगर इस भक्त का बिजनेस बढ़ा के, धन बढ़ा के वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो भगवान निश्चित रूप से उसका ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो भक्त शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ते हैं, तो भगवान भी मार्केटिंग करते हैं, उसको खूब सुविधाएं देते हैं। देखा है आपने, किसी अनुभव है, किसी का है, किसी का अनुभव कि भक्त लोग आते हैं भौतिक इच्छाओं के साथ, और भगवान पूरी इच्छाएं पूरी करते हैं कि खूब बिजनेस मिल जाएगा, नौकरी बन जाएगी, पेपर क्लियर हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, ताकि भगवान कहते हैं आए तो इसी शरण में, फिर बाद में संभालेंगे इसको। हाँ, तो इसलिए भगवान का उद्देश्य ये है कि हम किसी न किसी ढंग से भक्ति में जुड़ें और उनकी तरफ प्रगति करें। तो इस विचार से बिल्कुल हमें मुक्त होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर ये छोड़कर हम देवताओं की पूजा करेंगे, जैसे यहां लिखा गया है कि यहां शिव जी की पूजा करके हम ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, तो हमारी स्थिति कैसे होगी, रावण की तरह ना। तो निश्चित रूप से काल के रूप में भगवान सब कुछ ध्वस्त कर देंगे, सब कुछ ध्वस्त कर देंगे। जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तो काल के रूप में प्रधान जो भौतिक प्रकृति अक्रिय निष्क्रिय अवस्था में होती है, काल के रूप में उसको प्रवेश करके उसको सक्रिय करते हैं। और जब संहार करना होता है तो काल वापस से भौतिक प्रकृति से निकलकर भगवान में प्रवेश कर जाता है, और इस ढंग से सारे के सारे जीव फिर महाविष्णु के शरीर में अनंत काल तक पड़े रहते हैं। जब दोबारा सृष्टि की रचना होती है, फिर से भौतिक प्रकृति सक्रिय होती है। तो इसलिए हमारे सारे के सारे जो प्लान है इंद्रचित्ति करने के, भगवान ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अगर हमारा जो प्लान है एटर्नल इंद्रतृप्ति करने के लिए, माता देहूति बता रही है कपिल भगवान को कि ये जो इंद्रतृप्ति है ये असत इंद्रतृप्ति है, असत इंद्रियों द्वारा, लेकिन असली इंद्रतृप्ति है गोविंद भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना, उससे हमारी भी इंद्रियां तृप्त होंगी, तो वो कहलाती है भक्ति। अगर हम उसका प्लानिंग कर रहे हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमें उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और वो हमें आशीर्वचन मिलेगा। तो ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और देखिए ब्रह्मांड में कितनी योनियों में भटकने के बाद हमें हम प्रमाणिक गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो हमें इसके लिए भगवान को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, भक्तों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और हम सब तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़ रहे हैं। भागवतम के 11 स्कंद में बताया गया है, नाहि तव परमो लाभो देही नाम भ्रमितामि हि यतो विन्दित परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति। नाहि तव परमो लाभो, इससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं, देही नाम भ्रमितामि हि, उन देहधारी जीवों के लिए जो इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। यतो विन्दित परमाम शांतिम, जिसको प्राप्त करने के बाद असली शांति प्राप्त होगी। नश्यति संस्कृति, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेगा। तो इस संकीर्तन आंदोलन की इतनी महिमा है कि यह संकीर्तन आंदोलन सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए संकीर्तन आंदोलन में हमें जुड़ना चाहिए और इसे खूब, जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ इसकी रक्षा करनी चाहिए। वेदों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का यह आंदोलन केवल आनंद कांड है। लोचनदास ठाकुर बोलते हैं ना, परम करुण पय द्वय जन निताई गौर चंद सब अवतार शार मणि, केवल आनंद कंद। इसमें केवल आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। और ये जो आनंद है, हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सबका ये अधिकार है कि इस आनंद के सागर में डूबे रहें। आनंद के सागर में डूबना हमारा शाश्वत अधिकार है, लेकिन इसके लिए एक योग्यता है। वो योग्यता क्या है कि हम कृष्ण के प्रति हमेशा शरणागत रहें। कृष्ण को भूलेंगे तो इस सागर से उठाकर हमें भव सागर में डाल दिया जाता है, और वो है भाव सागर। भाव सागर से भव सागर आ गए हैं, अब हमें वापस कहां जाना है, भव सागर से भाव सागर, जो कि हमारी वास्तविक स्थिति है। अगर हमें किसी को आशीर्वाद देना है तो ये आशीर्वाद देना चाहिए। और जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हो गया है कि श्रील प्रभुपाद जी के हम शरण में आ गए हैं और संकीर्तन आंदोलन में जुड़ गए हैं, तो इस आशीर्वाद की हमें खूब रक्षा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भी हमारे अंदर अभी भी पार्श्विक चेतनाएं बनी हुई हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एनिमलिस्टिक डीलिंग्स, हम लोगों का जो व्यवहार है पशुओं के समान है। तो बुरा मत मानिए, भक्ति में जुड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, चार नियमों का पालन करने के बाद भी हमारी चेतना कई बारी पशुओं के स्तर पर रहती है। पशुओं के स्तर की चेतना का अर्थ यह है, पशु हमेशा प्रेयस देखते हैं, इमीडिएट। पशु कभी नहीं सोचते कि इसका लॉन्ग टर्म क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो भक्ति में आने के बाद भी हमने जीवन के परम लक्ष्य के प्रति इतने जागृत नहीं है, तो ये पार्श्विक चेतना है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि बकरियां खड़ी हैं और बकरियों को स्लॉटर हाउस में काटा जा रहा है, तो एक बकरी को आगे ले जा रहे हैं, उसको काट रहे हैं, अंदर से उसके रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है, जो बाहर खड़ी बकरी है बोली मुझे क्या, वो कटरी ना अभी तो इतनी अच्छी अच्छी घास है, मैं तो इसको खाऊंगी। तो प्रेयस, उसको बहुत प्रिय लग रहा है वो खास खाना। श्रेयस, भूल गई कि अभी मैं कटने वाली हूं, इस अपने आप को कैसे बचाऊं। तो वही हम सबका हाल है। हम सब संकीर्तन आंदोलन में जुड़ भी गए, जो कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन इसमें श्रेयस प्राप्त करने के लिए हम जागरूक नहीं है। हम प्रेयस में लगे रहते हैं, हम वही कार्य करते हैं जो हमें प्रिय हों। यहां जुड़ने के बाद भी हमारी इन तित्ते की इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, तो इस आशीर्वाद को छीन लिया जाएगा। ईश विध्वंस सीता शीताम, जिस ढंग से भगवान इंद्र तृप्ति की सारी योजनाओं को नष्ट कर रहे हैं, इसी ढंग से बार बार हमसे आशीर्वाद छीन लिया गया है। बहु जन्मे कदि श्रवण कीर्तन तदु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, क्योंकि ये इस आशीर्वाद को हमने पहचाना नहीं। वी आर टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ग्रांटेड। ये जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसको हम ग्रांटेड ले रहे हैं कि हाँ ऐसे प्राप्त हो गया। हम समझ नहीं रहे कि हम कितने भाग्यशाली हैं, नहीं समझ रहे। कल्पना कीजिए कि एक बार फिर से मां के घर में प्रवेश करना पड़ेगा, हमें अंधकार में, मल मूत्र में, घुटन में हमें रहना पड़ेगा 9 महीने। फिर से हमें भगवान से ये वचन देना पड़ेगा कि बाहर निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। फिर से पता नहीं कौन से माता पिता मिलेंगे, कौन सी अवस्थाएं मिलेंगी, हमें याद आएगा कि नहीं आएगा भक्ति करनी है, और तरह तरह की कठिनाइयां फिर से सहनी पड़ेंगी। अभी भगवान के गुरु के आशीर्वाद से हम समझ गए हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, तो क्यों नहीं हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और पूरी चेष्टाएं लगा देनी चाहिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नहीं करेंगे पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। फिर से हमें बार बार कष्ट आएंगे। तो पशु होते हैं वो इमीडिएट बेनिफिट को देखते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं सोचते। पशु कभी ये नहीं सोचेगा कि अगला जीवन क्या होता है। तो हम लोग भी यहां संकीर्तन आंदोलन में जुड़ने के बाद, भक्ति में लगने के बाद, हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि अगला जीवन क्या होगा। सोचना चाहिए कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूं इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर महाराज कहते हैं कि भक्ति में जुड़ने के बाद भी हमारे भौतिक आकर्षण क्यों बने रहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्यों बने रहते हैं भौतिक आकर्षण? तो उत्तर इतना अच्छा है, उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए बने रहते हैं क्योंकि भक्ति में जुड़ने के बाद भी, संकीर्तन आंदोलन में जुड़ने के बाद भी, हम लोग सही ढंग से जानते ही नहीं कि वैष्णव और गुरु के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। क्योंकि जब हम वैकुंठ लोक में जाएंगे तो वहां केवल भगवान ही नहीं है, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण का पूरा के पूरा उनके भक्त, पूरा का पूरा उनका पेरेफेरल लिया, उनका धाम। ये आल्टर में सबके सब कृष्ण हैं, केवल कृष्ण को अकेले रख नहीं सकते, साथ में उनकी अंतरंगा शक्ति होंगे, उनके भक्त होंगे, तुलसी देवी होंगी, तब ये हैं पूर्ण रूप से कृष्ण। कृष्ण इज अ कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ, कभी हम कृष्ण को अलग नहीं देखते हैं। लेकिन जो ये कृष्ण प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं ये वैकुंठ हैं, लेकिन यहां वैकुंठ में आने के बाद भी हम भक्तों से द्वेष करें और गुरु की आज्ञा का पालन ना करें तो इसका मतलब हमें वैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम भौतिक आकर्षण हमारे बढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं इस आशीर्वाद की हम रक्षा कर सकें और श्रेयस की तरफ प्रगति करें, तो भक्तों से और गुरु से बहुत ही सावधानी का व्यवहार रखना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर महाराज ये उदाहरण देते हैं कि हम गुरु से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा रहे हैं, अपनी नब्ज दिखाई, और फिर एक कागज लेके प्रिस्क्रिप्शन खुद लिखे, बोले चलो साइन करो, डॉक्टर बोले साइन करो चलो। तो इसी ढंग से हम गुरु धारण करते हैं और फिर हम गुरु को आदेश देते हैं कि मुझे ये सेवा चाहिए, चलो स्टैंप लगा दो ऊपर ठाक से, बस फिर बोलेंगे गुरु की आज्ञा पालन हो रहा है। तो ये हमारा व्यवहार रहता है। तो भक्तों को भी हम ग्रांटेड लेते हैं, गुरु को भी ग्रांटेड लेते हैं, ये पूरे आशीर्वाद को हम ग्रांटेड ले रहे हैं, जैसे हमारा अधिकार है, तो ये अधिकार हमसे छीन लिया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस आशीर्वाद की हम रक्षा कर सकें, ये मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत दुर्लभ है, उसके बाद ये हमें भक्ति मिल गई और उसके बाद संकीर्तन आंदोलन, उसके बाद प्रमाणिक गुरु, इतने आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी संभल ले रहे हैं। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनके तीन कैटेगरीज हैं, एक हैं देव, दूसरे हैं तिर्यक, तीसरे हैं नर। देवता, देव का अर्थ है देवता लोक, तिर्यक का अर्थ है निम्न योनिया और नर का अर्थ है मनुष्य। इन तीनों में मनुष्य सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। ना तिर्यक लोअर स्पीसीज भक्ति कर सकते हैं, ना देव देवतागण भक्ति कर सकते हैं, केवल मनुष्य भक्ति कर सकते हैं। और भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने भौतिक सृष्टि की रचना इस ढंग से की है कि इसमें दुख ही दुख है और बीच बीच में दुखों को कम करके हमें कुछ आराम मिलता है, ताकि हमें समझ सकें कि असली सुख कहां है, उसको ढूंढें। सुख की एक छाया प्रतीत होती है यहां पे। तो इसलिए मनुष्य योनि ही सबसे उत्तम योनि है भक्ति प्राप्त करने के लिए, और मनुष्य योनि प्राप्त करना अपने आप में आशीर्वाद है। फिर गुरु की शरण प्राप्त होना एक और आशीर्वाद है, संकीर्तन आंदोलन में कोई सेवा मिल जाए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इतने कुछ आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भी हम जागरूक नहीं हो रहे अपने श्रेयस को प्राप्त करने के लिए, यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो फिर क्या होगा, जैसे कि श्लोक में बताया जा रहा है कि ईश वेदवंत सीता शीताम, कि ये जो आशीर्वाद भगवान दिए हुए हमें, अगर हम इसका सही प्रयोग नहीं कर रहे तो ये भी विध्वंस कर दिया जाएगा। तो हम सबको जागरूक होना चाहिए और अपने जीवन के जो असली लक्ष्य है उसके प्रति हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण 24 के 24 घंटे हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाना चाहिए। यह हमारा असली बिजनेस है, व्यवसाय है। जैसे एक बिजनेसमैन हमेशा सोचता रहता है कि कैसे बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं, कैसे एक्सपेंड करूं, इसी ढंग से जो एक आध्यात्मवादी है, जो एक भक्त है, उसका केवल एक ही बिजनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस,
कैसे कैसे मैं अपनी चेतना को और शुद्ध करूं। हम लोग अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अपनी चेतना से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वी कंप्रोमाइज ऑन अवर कॉन्शियसनेस टू इंप्रूव अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट शुड बी अदर वे अराउंड। वी शुड बी रेडी टू कंप्रोमाइज ऑन अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव अवर कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस इंप्रूव करना हमारा बिजनेस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना हमारा बिजनेस नहीं है। तो कभी भी ऐसा हम कार्य ना करें जिससे हमें अपनी चेतना से कंप्रोमाइज करना पड़ जाए। चाहे हमारे को जीने का स्तर कम हो जाए, लेकिन हमारी चेतना हमेशा हमेशा शुद्ध रहे। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, और जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए उसकी हमें रक्षा करके रखनी है। तो सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है इस वक्त? भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि भौतिक वस्तुओं से हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, आसक्ति कम होनी चाहिए और भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। भक्तों के प्रति हमारा प्रेम नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब हम प्रगति नहीं कर रहे। चार पुरुषार्थ तो यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। यस गोविंद राम जी।
मतलब आज के श्लोक से हमें पता लग गया कि अमेरिका में जो वर्ल्ड सेंटर का पैटर्न ऑफ द आल हुआ वो विध्वंस की तरफ चला गया।
बिल्कुल 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 सही बात है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ वो विध्वंस ही हुआ। सही बात है। बिल्कुल 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 सही बात है। नहीं, भगवान के साथ अगर हम कॉपरेट करेंगे तो हम भी इंजॉयर बनेंगे। वी आर नॉट द इंजॉयर, इंडिपेंडेंट इंजॉयर, बट इफ वी कॉपरेट इन कृष्णास प्लान ऑटोमेटिकली वी गेट एंजॉयमेंट। तो बलि महाराज ने कृष्ण की पूरी योजना में उन्होंने साथ दिया। तो बलि महाराज नहीं चाहते थे कि मुझे सूतल लोक मिले या मुझे एंजॉयमेंट मिले। ही जस्ट वॉन्टेड टू सर्व विष्णु, और फिर भगवान ने उनको दिया रिटर्न में। तो वो भी जो लोक है वो खुद एंजॉय नहीं कर रहे, वो सब कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। बलि महाराज एक महाजन है, देन अथॉरिटी ऑन रिलीजन। यस
प्रैक्टिकल उदाहरण देकर तो ये अगर हो सके तो बताइए कि एक भक्त का क्या विचार रहता है डिवोशनल सर्विस के दौरान लिविंग स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज करना और कॉन्शियसनेस से कॉम्प्रोमाइज ना होना।
इसमें बहुत से उदाहरण है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उसको कई अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिल सकती हैं। कोई लेदर का बिजनेस कर लो या कोई ब्रिवरी खोल लो, तो उसका खूब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, खूब धन मिलेगा, लेकिन वो चेतना से कंप्रोमाइज कर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है। स्लॉटर हाउस खोल लो तो खूब धन ही धन है लेकिन उसकी चेतना दूषित हो रही है, तो करना नहीं चाहिए। दूसरा नहीं, अगर ऐसा उसको अवसर प्राप्त हो, अगर ऐसा हाँ रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में वो नॉनवेज सर्व कर रहे हैं, नॉनवेज बंद कर दे तो उसका हो सकता है मुनाफा कम हो जाए लेकिन उसकी चेतना विकसित होगी, है ना। इसी ढंग से जो लोग समझ लीजिए मंदिर में फुल टाइम डिवोटीज हैं, अगर कि बोले नहीं नहीं हमें तो बस उस भक्त के पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए प्रचार के लिए, है ना, और उसके लिए हम उनसे द्वेष कर रहे हैं और द्वेष करके कुछ ना कुछ करके हमने भी बड़ी गाड़ी लकड़ी अपने लिए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ गया लेकिन चेतना कहीं डूब गई हमारी। तो उससे अच्छा ठीक है हम पैदल चले जाएंगे, स्कूटर पे चलेंगे, बस में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम चेतना दूषित ना करें किसी भी अवस्था में। हमारा बिजनेस यही होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी चेतना को शुद्ध करूं, ऐसा कोई भी कार्य ना करूं जिससे मेरी चेतना दूषित हो।
ये तो बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल हो गए कि मीट की दुकान नहीं खोलनी, ऐसा नहीं करना, पर तो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज में हमारी चेतना जगह जगह दूषित।
बिल्कुल
बहुत छोटी छोटी किसी भक्त ने कोई बात कही वो मालूम थी तो ऐसे मुस्कुरा दिया और उसको इग्नोर कर दिया, तो ये चेतना दूषित हो रही है इससे। और ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में कैसे कभी कई बारी ऐसी चीज होती है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें नहीं कर सकते। तो
देखिए अगर हम सजग रहेंगे, उस दिन बता रहे थे होलीनेस वेदव्यास प्रिय महाराज कि हम अपराधों के प्रति सजगता ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। इफ यू आर ऑलवेज कॉन्शियस कि आई एम नॉट कमिटिंग ऑफेंस, आई एम सर्विंग द वैष्णव्स, तो हमेशा सजग रहेंगे। भक्त मीन्स सजग, भक्त डजंट मीन्स कि ठीक है कि मूर्ख है सो रहा है। हमेशा सजग अवस्था में रहेंगे तो वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट। तो प्रयास करेंगे, अगर हमारा सर्विस एटीट्यूड हम अपने में रखेंगे और प्रयास करेंगे तो कम से कम अपराध होंगे और कम से कम हमारी चेतना दूषित होगी।
आपने बताया कि भक्ति को जुड़ने के बाद भी मटीरियल डिजायर रहती है, उसका कारण है वी हैव नॉट लर्न टू डील विद गुरु एंड वैष्णव। ये प्रोजेक्ट कैसे रिलेट हो गया?
ये बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम वैकुंठ में जाना चाहते हैं और तो वैकुंठ में कौन मिलेंगे? भक्ति मिलेंगे, भक्ति मिलेंगे। और अगर भक्तों से हमें व्यवहार करना अच्छा नहीं आ रहा तो अपने आप ही भगवान कहेंगे तुम ठीक है, आप इसमें डिजर्व नहीं करते। तो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं तो हमें इंस्पायर करेंगे, चलो बाहर सुख ढूंढो, बाहर ही सब कुछ करो, तुम्हारे भौतिक आकर्षण बढ़ेंगे। तो इसलिए लिखा है भागवतों में बार बार आता है वन शुड लर्न टू एसोसिएट विद डिवोटीज। हमें आता नहीं है भक्तों से संग करना, बद लोग हैं ना, पशु से ऊपर उठ रहे हैं हम, तो हमें आता नहीं है। भक्त हमारे लिए नई वस्तु है, तो वन शुड लर्न। गलतियां होंगी लेकिन लर्न करें, सीखें कि भक्तों से कैसे व्यवहार करना है। तभी वैष्णव सदाचार के कोर्स किए जाते हैं बार बार, और बार बार हमें करने चाहिए कि वन शुड लर्न। ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है कि जबरदस्ती प्रणाम करना पड़ता है, जबरदस्ती सबको करना पड़ेगा, एटिकेट्स का पालन करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू एसोसिएट विद डिवोटीज। वन शुड लर्न, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, बट हमेशा सीखना चाहिए कैसे भक्तों से संग करें। उसमें हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज, सबसे अच्छा है डिवोटीज का एसोसिएशन करना। वी शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू सर्व देम। भक्तों के साथ जब हम संग कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कृष्ण ने फिर से एक आशीर्वाद दिया हमें, कैसे मैं इसकी सेवा करूं। बुरा मकनानी, अभी हमारी क्या चेतना होती है कि इस भक्त को मैं कैसे प्रयोग करूं, हाउ कैन आई यूज दिस डिवोटी, कैसे अपने झूठे अहंकार को, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मेरे कैसे काम आ सकता है। बहुत ही चेतना किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो बोलते हैं मेरे काम का क्या है इसमें, व्हाट्स देयर इन फॉर मी, मुझे इससे क्या मिलेगा बातचीत करके, कुछ खास नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। तो इसी हम भक्तों से मिलते हैं तो यही चेतना रहती है, लेकिन हमें यह चेतना होनी चाहिए कि इसको मैं कैसे सर्व कर सकूं, कैसे इसको मैं भक्ति में प्रगति करने के लिए कुछ मदद कर सकूं, इसकी वाणी की सेवा, इसकी बापू की सेवा कैसे करूं। तो इस ढंग से हम करेंगे तो हमारे साथ हमसे कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि सेवा करेंगे तो पॉजिटिव है, कोई अपराध नहीं होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी और वो व्यक्ति भी भक्ति में आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटीज।
आपने भी कहा ना कि हमें जो भक्ति में आ जाते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आई वांट टू रिलेट एन एक्सपीरियंस। रिसेंटली सबको पता ही है मेरे साथ हार्ट डेंगू, बेटे को डेंगू हुआ था, बेटे को भी डेंगू हुआ था। तो जिस दिन डॉक्टर ने बोला उसके प्लेटलेट्स काफी कम हो गए, पर भक्तों ने काफी मेरी मदद की, जैसे मुकेश प्रभु ने उसका टेस्ट वगैरह कराना इन अदर से हॉस्पिटल, बिकॉज डिवोटीज की एसोसिएशन होती है, भगवान पूरी सबको प्रेरणा देते हैं हेल्प करने की। उधर से उसके प्लेटलेट्स फिर भी कम हो रहे थे, तो मेरा लेक्चर था रोहिणी में, अब एक प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम था और जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था मैं उनको जानती नहीं थी, किसी ने सुना था और उनको कहा कि आप ऑर्गेनाइज करो, उनको बुलाओ। तो 600 लोगों का प्रोग्राम था और उसी शाम को डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा इसको हॉस्पिटलाइज करना है, अभी लेके जाना हॉस्पिटल। तो दूसरे डॉक्टर से भी राय ली, उसने भी कहा कि हो सकता है सुबह तक कर लें, आप रुक सकते हो, शाम को इसको वॉच करो। तो वॉच करने के लिए समस्या थी कि हम दोनों में से कौन घर में रुके, उसको रखें घर में तो कैसे कौन रहेगा। फिर उसका समाधान हुआ कि मैंने अपनी बेटी को बोला यू स्टे विद हिम, उसको छोड़ा उसके पास, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है पर डर था कि पीछे से कुछ हो। एनीवे उस डर को मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान के विचार के लिए जाना, जो होगा देखा जाए। और उसके गले में मैंने नर्सिंग कवच डाल दिया और हम लोग चले गए। और ये देखो आप, जहां मैंने लेक्चर दिया मुझे लेक्चर के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया तो वहाँ छह डॉक्टर्स हिंदूराम हॉस्पिटल के थे, जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो भी एक हिंदूराम हॉस्पिटल का डॉक्टर, आगे से सीनियर डॉक्टर्स का हिंदूराम हॉस्पिटल और एक बत्रा हॉस्पिटल, सेवन डॉक्टर्स वहाँ पर। जब उनको पता चला कि मेरे बेटे को डेंगू है, मैं यहाँ हूँ, अगले दिन वो डॉक्टर कहते हैं जी आप अभी जाके पहले तो फोन करके हमें पूरा बताइए कि उसका क्या स्टेटस है। और फिर नेक्स्ट डे सुबह तक उनके फोन आते हैं और मेरे को वो सुबह हमारे घर दोपहर को वो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं उसका पूरा चेकअप करने के लिए घर ही आ रहा हूँ, आपको हमने हॉस्पिटल जाने का मुझे उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर दिया अगर से इसको लेके जाना। बदन अभी इन्होंने पूछा भी उसका मेडिक्लेम वगैरह है, बिकॉज एक टाइम प्लेटलेट्स चढ़ेंगे तो कम से कम खर्चा है कैन गो इनटू लाख, लाखों में भी जा सकता है, हजारों में लाखों में जाए। तो मैंने कहा मेडिक्लेम तो नहीं है। एनीवे फिर उसके बाद अगले दिन वो डॉक्टर कहने के हॉस्पिटल गया, मैं खुद ही आपके पास आता हूँ। वो अपने कंपाउंडर वगैरह सबको लेके हमारे घर पूरा उसका उन्होंने चेकअप किया, थॉरल चेकअप। उसके बाद कहते हैं कि आप मुझे आधे आधे घंटे बाद ना इसका पूरा देते रहो कि क्या इसका, वो खुद फोन करते थे, मेरे को भी फोन करने की जरूरत नहीं, वो पूरा वॉच आउट कर रहे थे इसका ब्लड प्रेशर क्या है इसका। उसके बाद उसका शाम को उन्होंने कहा कि मैं सीनियर डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ आपके पास। रात को 10:30 बजे सीनियर डॉक्टर हमारे घर और वो 11:30 पौने 12 बजे तक वहां रहे और उसका पूरा चेकअप फिर करते रहे। कहते हैं आप कोई टेंशन मत लो, सुबह तक वॉच आउट करेंगे आप कि इसको एडमिट करना है कि नहीं करना। और सुबह भगवान की कृपा कि गुरु महाराज रात को रशिया से आ रहे थे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट और मेरे को एयरपोर्ट जाना था पर नहीं जा सकी। गुरु महाराज का फोन आ गया एयरपोर्ट से, उधर से प्लेन गाड़ी में बैठ के फोन आ गया कि राधिका कृपा तुम्हारा बेटा की तबियत ठीक है, मुझे पता चला उसे हॉस्पिटलाइज करना। मैंने कहा मैंने आज अभी उसका ब्लड टेस्ट कराने जा रही हूँ, अभी पता चल जाएगा कि इसको करना है कि नहीं करना, अगर प्लेटलेट नीचे चले गए तो करना पड़ेगा। हम ब्लड टेस्ट कराने गए तो महाराज जी से बता रहे हैं कि पूरा ध्यान रखना, टॉप मोस्ट से ब्लड टेस्ट कराना सबसे बढ़िया से जा रहा है। मैंने कहा डॉक्टर लाल से कराऊंगा, नीडल का ध्यान रखना कि नीडल डिस्पोजेबल हो, उसका पूरा केयर करना, इमेजिन गुरु होकर उतना ध्यान रखते हैं। उसके बाद मैं ब्लड टेस्ट कराने गई, उसको रिक्वेस्ट की कि 2 बजे तक रिपोर्ट दे देना, पर उन्होंने शाम तक दी, पर रिपोर्ट आते ही उसके प्लेटलेट 10,000 बढ़ गए। तो मैं शाम को बस जैसे रिपोर्ट बढ़ने की आई उसको फिर घर में छोड़ के शाम को गुरुमाल से दर्शन करने चले गए। और मेरे को जैसे उसकी रिपोर्ट आई ना बढ़ने की तो मुझे कहता है एक बात उसने कही, हर्ष मुझे कहता है मम्मी मेरे को ना पेस्ट्री खाने का मन कर रहा। तो मैंने कहा हर्ष पेस्ट्री तो अभी नहीं खानी है, वो भी समझने अगर जाऊंगी तो आएगी, पर डॉक्टर से पूछ लेती हूँ पर नहीं खानी है। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ हेल्प नहीं देना चाहिए। मैं शाम को गुरुमाराज को मिलने गई, महाराज ने हम सबको प्रसाद दिया, रशिया से केक पेस्ट्री लाए हुए थे, महाराज ने सबको प्रसाद दिया। मुझे कहते हैं अच्छा मुझे फिर भी ध्यान नहीं है कि हर्ष ने मांगी थी उसके लिए लेके जाना है, मैंने अपना शेयर खा लिया। मुझे फिर एकदम कहते हैं 5 सेवक जो थोड़ा बच गया है ना गिव इट टू राधिका कृपा हर्ष के लिए, जो पेस्ट्री हर्ष के लिए है। और मैं हर्ष को आते ही घर में वो पेस्ट्री थी। और अगले दिन सुबह उसका मेरे को कहते हैं फिर गुरुमाराज का फोन आया, उसका ब्लड टेस्ट कराने जाए थे, गुरुमाराज का कॉल आया कि आज उसका ब्लड टेस्ट करा लिया। तो मैंने कहा हमारा जगह कराने जा रही हूँ और आप मानोगे नहीं उसका ब्लड काउंट एकदम डबल हो गया, 10,000 बढ़ा और डबल हो गया। ये है अनन्या सुराम सिंह का भगवान कहते हैं मैं सुरक्षा करता हूँ, जो किसी को कुछ होता है तो मैं सुरक्षा करता हूँ।
Yes, definitely. तो भगवान हमारी निश्चित रूप से हर हालत में रक्षा करते हैं, तो पूरे उत्साह के साथ तो संगीत ना लगल में चढ़े हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री गौनिताय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।